भगवान श्री कृष्ण को दो प्रश्न पूछे और पिछले हफ्ते अर्जुन की श्रृंखला में ये जो दो प्रश्न उन्होंने पूछे उस पर चर्चा करते हुए अर्जुन की बुद्धि का विकास किस प्रकार से हुआ है उनके प्रश्नों के संदर्भ में हमने इस पर चर्चा की। और किसी भी मनुष्य की बुद्धि का विकास का स्तर यदि हमें जानना है तो उसके प्रश्नों के स्तर से जानना होगा कि वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर को अपने जीवन में अपनाता है। तो इसकी चर्चा हमने पिछले बुधवार को की थी। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा कि हे कृष्ण, आपने बुद्धि योग के विषय में, सकाम कर्म के विषय में बताया मुझे, आप निश्चित रूप से अब मुझे बताइए कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, व्हाट इज अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर मी। और श्रेय शब्द के पांच अर्थ हमने पिछली बार लिए थे, परम सुरक्षा, परम शांति, परम आनंद, परम सौभाग्य और अंततः परम धाम, जिसके विषय में एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने इसकी चर्चा की थी। तो अर्जुन के अब ये दो प्रश्न के पश्चात आज का जो श्लोक हम लिए और लेने वाले हैं, श्री भगवान उवाच, तो ये दो श्लोकों को लेना होगा आज के श्लोक को समझने के लिए, 3.1 और 3.2। यदि बुद्धि योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस घोर कर्म में हे कृष्ण आप क्यों लगा रहे हो। पिछले बुधवार को हमने श्लोक लिया जहां अर्जुन पूछ रहे हैं मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा, आप निश्चित रूप से बताइए। तो अब आज का श्लोक भगवान अर्जुन के पहले प्रश्न से अब उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहां पर यह भी समझ में आता है, हालांकि अर्जुन ने यह पूछा कि मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्रलोभन हो सकता था कि सबसे पहले उसका उत्तर दें। जब हमें कोई प्रश्न पूछता है और अंतिम प्रश्न यदि उसने ये पूछ लिया कि अल्टीमेटली मेरे लिए क्या है बता दीजिए, तो हम अक्सर पहला प्रश्न भूल जाते हैं। जो उसने फाइनल क्वेश्चन पूछा है और वो भी ऐसा क्वेश्चन कि फाइनली अल्टीमेटली बता दीजिए कि मुझे क्या करना है, तो हम उसी अंतिम प्रश्न में बह जाते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, इसलिए आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के पहले प्रश्न को लिए बहुत सिस्टमैटिकली भगवान समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अरे अब जल्दी जल्दी गांडी उठवाना है अर्जुन से और युद्ध करवाना है तो चलो कट शॉर्ट कर अल्टीमेटली पूछ लिया है ना कि सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है तो उसी को सुना देते, नहीं, सिस्टमैटिकली भगवान भी सुना रहे हैं। तो ये संबंध है पिछले श्लोकों का। तो आज का श्लोक इस प्रकार से, श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां, कर्म योगेन योगिनां श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिनां दूसरी लाइन यदि हम लें सबसे पहले तो भगवान कह रहे हैं मया पुरा प्रोक्ता हे अनघ अनघ का अर्थ है निष्पाप तो हे निष्पाप अर्जुन मया मैंने पुरा प्रोक्ता पहले तुम्हें मैंने बता चुका हूं मैं क्योंकि अर्जुन फिर पूछ रहे हैं ना तो भगवान फिर बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया है पुरा पुरा का अर्थ है पहले जैसे कि पुरातन या पुराना तो मैंने पहले तुम्हें बता दिया है कि ये सांख्य योगी नाम कर्म योगी नाम इन दोनों के विषय में मैं बता चुका हूं तुमको लेकिन फिर तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं फिर बताऊंगा लोके अस्मिन इस लोक में द्विविधा निष्ठा दो प्रकार की निष्ठाएं हैं टू टाइप्स ऑफ फेथ इन दिस वर्ल्ड वन इज ज्ञान योगेन सांख्यानाम जो ज्ञानी हैं और ज्ञान मार्ग से सांख्य मार्ग से अपने आत्मा का साक्षात्कार करते हैं और दूसरे हैं जो कर्म योग या बुद्धि योग या भक्ति योग के द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हैं तो कर्म योगेन योगिनाम तो यहां पर भगवान अर्जुन को इस एक श्लोक में खाली पिछले दूसरे अध्याय का पूरा जिस्ट जिसे कहते हैं संक्षिप्त रूप में बता दिया और भगवान बताए क्या वही रिपीट किए ताकि अर्जुन को याद आए कि उन्होंने पहले से कहा है तो यहां पर गौर करने की बात यह है कि भगवान ने अर्जुन को अर्जुन नहीं पुकारा अनघ पुकारा निष्पाप और भगवान को तो भगवान यहां पर कहा है श्री भगवान उवाच तो भगवान ने अर्जुन को निष्पाप क्यों पुकारा इसका संबंध श्री भगवान उवाच से क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे तो पूरा अनुवाद आज के श्लोक का इस प्रकार से है श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं कुछ लोग इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा तो आज के श्लोक की शुरुआत है श्री भगवान उवाच श्रील प्रभुपाद हर समय जब भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में भगवद गीता में उल्लेख किया गया तो प्रभुपाद सबसे पहले अपने तात्पर्य में लिख देते हैं कि ये भगवद गीता कोई साधारण व्यक्ति नहीं सुना रहे ये साक्षात श्री भगवान सुना रहे हैं तो यहां आप यदि इस एरो पर ध्यान दो तो दोनों ओर ये जो एरो है उसका पॉइंट्स है मतलब कनेक्टेड है ये क्या श्री भगवान उवाच और हे निष्पाप अर्जुन तो इसका कनेक्शन क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे तो श्री भगवान के दो अर्थ बताए गए हैं आज के श्लोक में हमारे आचार्य बताते हैं सबसे पहला अर्थ है सभी मार्गों के स्रोत और दूसरा अर्थ है सर्व पाप निर्वापणम अब भगवान शब्द को विच्छेदित करें तो भगवान जो कि ऐश्वर्यों को धारण किए हैं वो है भगवान। जैसे कि धनवान, रूपवान, शीलवान, वैसे भगवान। तो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण, जिनके पास पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुंदरता, पूर्ण यश, वैराग्य, ये ऐसे छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण वो हैं भगवान। तो हम यदि पहला अर्थ लें, इस संसार में कोई व्यक्ति यदि किसी मार्ग पर लगा हुआ है, चाहे वो ज्ञान का मार्ग हो, चाहे इंद्रिय भोग का मार्ग हो, किसी भी मार्ग पर कोई भी लगा हुआ है, तो उस मार्ग में वो कोई ऐश्वर्य हासिल करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए को कोई पीएचडी कर रहा है, तो एजुकेशनल लाइन में हो, उस मार्ग में है, तो वहां पर उसकी अपेक्षा क्या है कि मुझे ज्ञान का ऐश्वर्य मिले। कोई यदि स्पोर्ट्स में है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है और उसमें जो कला है उसका ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है। कोई इंद्रिय भोग में लगा हुआ है तो इंद्रिय भोग का ऐश्वर्य, कितने सारे उसके ऐश्वर्य हैं वो प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान इस शब्द का एक और अर्थ ये है कि वो सभी ऐसे ऐश्वर्यों के स्रोत हैं। तो यदि अर्जुन किसी भी ऐश्वर्य के विषय में जानना चाहता है, चाहे वो ज्ञान हो, सांख्य हो, भक्ति, बुद्धि, कर्मयोग, जो भी कोई मार्ग हो जिसके अंदर ऐश्वर्य छिपा हुआ है, तो अर्जुन को, हालांकि अर्जुन तो सही व्यक्ति के पास आए हैं, अर्जुन के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि किसी को भी कैसा भी ऐश्वर्य प्राप्त करना है इस संसार में, तो श्री भगवान वाच से सुनना चाहिए। Anyone who is desirous of any opulence, whether small or big, should approach श्री भगवान, वही स्रोत है। तो ये पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ, सर्व पाप निर्वापणम। अब बहुत सी चर्चाएं होती हैं इस भौतिक संसार में, इसकी चर्चा होती है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में तो सभी अनघ हैं, सभी निष्पाप हैं, लेकिन इस भौतिक संसार में कोई भी नहीं जो कि पाप से मुक्त है। जाने में अनजाने में कितने सारे पाप हमसे हुए हैं, हो रहे हैं। तो अब विधियां बहुत हैं, मार्ग बहुत हैं, अलग अलग प्रकार के पाप निर्वापणम के। कोई कर्मकांड में लगा है, कोई ज्ञान में लगा है, कोई अष्टांग में लगा है, और कोई किसी में नहीं लगा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, क्योंकि वो नास्तिक, भगवान पर विश्वास से नहीं कर रहा। तो चाहे कोई कितने भी मार्गों में लग जाए, यहां पर जब तक कि वो श्री भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक सर्व पाप निर्वापणम नहीं हो सकता। कर्मकांड की विधि से कुछ पाप का एडजस्टमेंट यहां वहां हो सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, यहां वहां एडजस्टमेंट थोड़ा हो सकता है, लेकिन सर्व पाप निर्वापणम कदापि संभव नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा अनघ, अघ का अर्थ होता है पाप, अनघ निष्पाप। जैसे वृंदावन में एक असुर आया, अघासुर, देखिए उसको ये नामकरण उसका ऐसा हुआ था कि सिन परसोनिफाइड, ऐसा असुर, अघासुर। लेकिन वो अघासुर भी जब भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आया तो अनघ बन गया। तो यहां पर फिर व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि ये अर्जुन जो कि भगवान का एक पार्षद है और जन्म जन्मांतर तक भगवान के साथ ही लीला करता है, ये अर्जुन ये बचपन से भगवान श्री कृष्ण के साथ और भगवान के परिवार में संबंधित ये अर्जुन जो इतना भगवान से प्रेम करता है और अब भगवान के श्रीमुख से सुन रहा है, भगवान इसके सारथी बने हैं, तो क्यों ना ये अर्जुन निष्पाप होगा। तो यहां व्यासदेव जी के दृष्टिकोण से यदि हम श्री भगवान और निष्पाप अर्जुन के संबंध को देखें आज के श्लोक में, तो व्यासदेव जी ये बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आने मात्र से बिना सुने, अभी तक भगवत गीता पूरी सुनी भी नहीं है अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन निष्पाप हो गया। Only by the mere association of Krishna can make one sinless. And opposite of that, no matter what one does outside of Krishna association, one will always remain with some amount of sin. तो अब इसमें अर्जुन को खुश नहीं हो जाना चाहिए कि अरे भगवान ने तो मुझे निष्पाप बोल दिया, मैं तो पिछले अध्याय में इतनी चिंता कर रहा था कि इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, भगवान ने तो मुझे निष्पाप बोल दिया। तो केवल निष्पाप होने से कोई कृष्ण भक्त नहीं बन जाता, ये एक और उसका फ्लिप साइड समझना है। तो कई बार हम लोग बहुत अपने आप को खुश नसीब मानते होंगे कि अरे तो मैं तो आ गया ना फिर कनेक्शन में, कितने वेडनेसडे से आ रहा हूं कनेक्शन में, मंदिर भी आता हूं, यहां पे जप भी करता हूं और डीटीज के कनेक्शन में, तो फिर मैं तो हो गया निष्पाप। हालांकि अपनी अलग स्टोरी है। तो कनेक्शन बराबर हुआ कि नहीं, लास्ट टाइम हम इसकी चर्चा कर रहे थे, वो भी देखना जरूरी है। तो अर्जुन को हालांकि निष्पाप भगवान ने कह दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। ये निष्पाप स्थिति जो क्या है, न्यूट्रल स्थिति है, और इसके ऊपर है कृष्ण प्रेम की स्थिति। तो अभी तक ये तीसरा अध्याय जो प्रारंभ हुआ है, इसमें अर्जुन कौन से स्टेज पर आ चुके हैं या हैं स्थित है, न्यूट्रलिटी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जो श्रील प्रभुपाद ने भी हमें ये विधि दी, फॉलो द फोर प्रिंसिपल्स, तो उसमें क्या होगा, यू विल बिकम सिनलेस। सो वंस यू विल बिकम सिनलेस, देन द नेक्स्ट स्टेप इज चैंट हरे कृष्णा एंड अचीव कृष्ण प्रेम। तो अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी, इन्होंने बहुत ही साइंटिफिकली और एनालिटिकली ये जो पाप है इसका उद्गम स्थान क्या है, ओरिजिन क्या है, इसकी स्रोत क्या है पाप का, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सिन, ये उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। तो कहते हैं कि सबसे पहले शुरुआत होती है अविद्या, इग्नोरेंस। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि इस भौतिक संसार में हरेक बद्ध जीव पैदा होता है अविद्या में, अबोध जातः। हम पैदा होते हैं अविद्या में, चाहे वो कोई ऊंचे लोकों का कोई वासी हो, या चाहे इस पृथ्वी लोक का, या किसी भी लोक का, किसी भी योनि में, एनीवन हु हैज बीन बोर्न इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज बोर्न इन इग्नोरेंस। तो अविद्या, इसके पश्चात रूप गोस्वामी कहते हैं कि उस अविद्या के कारण नेक्स्ट स्टेज उस जीव में क्या दिखता है? ये कूटम, सिनफुल प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का अर्थ है प्रवृत्ति, कि अब उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति उस अविद्या के कारण जागृत होती है। जैसे कि कितनी सारी चीजें हमें पता नहीं होती, और जब उसका ज्ञान होता है तब पता लगता है कि हम कितना सही थे कितना गलत थे। हम ये नहीं कह रहे कि जब हम आप अध्यात्म में आते हो तभी पता लगता है, बाहर भी। छोटे बच्चे, उनको कोई कुछ पता नहीं कि क्या सही क्या गलत। बचपन में अविद्या के कारण वो जिसको सही मानते थे, बड़े होने के बाद पता लगता है कि वो सबसे गलत चीज कर रहे थे। तो इसे कहते हैं कूटम। और फिर कूटम के पश्चात बीजम, कि वो जो प्रवृत्ति, पाप करने की प्रवृत्ति, अब बीज में परिणित होती है। तो ये कूटम और बीजम में अंतर क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई किसान है, और किसान अपनी फसल उगाने के लिए क्या आवश्यकता है उसको? बीज की आवश्यकता है। तब कूटम की अवस्था है कि बहुत सारे बीज वो किसी गोदाम में रखे हुए, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फसल के बीज गोदाम में रखे हुए। तो ये कूटम की स्थिति है कि हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है, बहुत बड़ा गोदाम भरा पड़ा है उसका। अलग अलग योनियों में, जन्मों में जितने सारे हमने पाप कृत्य किए, वो सब गोदामों में भरे पड़े हैं। और बीजम का अर्थ क्या है? कि अब इस योनि में, इस स्थिति में, आज के दिन, इस समय, मैंने उस गोदाम से कौन सा बीज बाहर निकाला उसे बोने के लिए, उसे कहते हैं बीजम। सो सिनफुल डिजायर। जैसे कि किसी के अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति, तो इसे कहेंगे कूटम, चोरी करने की प्रवृत्ति। लेकिन फिर जब वो डिसाइड करता है कि मैं कौन सा बैंक लूटूंगा, किसका जेब काटूंगा, किसका घर लूटूंगा, पूरा एकदम सिस्टमैटिक नेम एड्रेस के साथ जब वो इच्छा करता है, तो उसको कहते हैं बीजम। नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक सिनफुल डिजायर बेस्ड ऑन द सिनफुल प्रोक्लिविटी। तो बिना कूटम के बीजम नहीं हो सकता। अब इसके पश्चात जब बीज बो दिया जाता है, तो अब वो फलोन्मुखम, तो फिर दैट सिनफुल डिजायर लीड्स इनटू सिनफुल एक्शन। तो देखिए, पाप अविद्या के कितने स्टेजेस बाद होता है, इसके बीच में ये सब स्टेजेस जो हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि भक्ति जो है, कर्मकांड जो है, वो केवल जैसे जिसको कहते हैं ना सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, कि खाली फोड़ा हुआ है तो उंगली घुमाते रहो वहीं पे, है ना, फोड़ा होता तो उंगली घुमाने से अच्छा लगता है। तो ये कर्मकांड की विधि, बस उंगली घुमाते रहो, उंगली फूंक मारो उसको। मानो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, फोड़ा हुआ है, डॉक्टर बोला फूंक मारो, कैसा लगता है बताओ, बोला बहुत अच्छा लगता है, मारते रहो फूंक, तो उसे फोड़ा तो ठीक नहीं होगा ना। तो इसलिए वो रक्त दूषित हुआ है जिसके वजह से वो फोड़ा हुआ है, तो जो असली वैद्य है वो रक्त को शुद्ध करेगा, तो वो भक्ति की विधि है। इसलिए रूप गोस्वामी जैसे वैद्य वो जा रहे हैं एकदम डीप, खाली पाप में नहीं, बीज कहाँ है, वो बीज कौन से गोदाम से आया है, अविद्या, वहां तक उस ग्रास रूट लेवल पर जाकर उसे उखाड़ फेंकने का हमको फॉर्मूला दे रहे हैं। तो अब इतना नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि दो दंडियां और निकल गई है, और क्या बाकी रह गया अभी? हाँ बहुत जरूरी है, ये दो चीजें तो और जानना बहुत जरूरी है कि अब पाप सिंफुल एक्शन के पश्चात क्या है, तो दो में परिणित हो जाता है ये। जो भी कोई पाप कृत्य करता है तो वो दो कैटेगरीज में परिणित हो जाता है, एक है अप्रारब्ध अनमैनिफेस्ट रिएक्शन और दूसरा है प्रारब्ध मैनिफेस्ट रिएक्शन। प्रारब्ध शब्द तो बहुत सुना होगा हमने कि मेरे प्रारब्धों के वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, लेकिन केवल प्रारब्ध नहीं अप्रारब्ध भी। तो जैसे ही कोई किसी पाप कृत्य में लगता है तो तुरंत दो लाइन बाहर आती है, एक अनमैनिफेस्ट जो कि अब तक वो फलोन्मुख नहीं हुआ है, मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो उसकी कैटेगरी में चला जाता है। क्योंकि ये इसलिए जाता है कि जाने अनजाने में इतने सारे पाप हमारे, उसका जो रेट है, किसका पाप करने का जो रेट है, फ्रीक्वेंसी, वो इतना ज्यादा है कि उसको फलोन्मुख होने में समय लगता है। इसलिए भौतिक प्रकृति क्या करती है, उसको इस गोदाम में डाल देती है, चलो अनमैनिफेस्ट अप्रारब्ध अप्रारब्ध, और फिर टाइम के अनुसार प्रारब्ध उसको आते रहते हैं, आते रहते आते रहते हैं, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टॉक कहां से आ रहा है। तो ये जो अप्रारब्ध और प्रारब्ध पूरा डायरेक्ट कनेक्शन है ये दोनों गोदाम का। अच्छा इतना ही नहीं, अब इसमें होता क्या है कि ये जो अप्रारब्ध और प्रारब्ध, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट सिंफुल रिएक्शंस जो होते हैं, इनके वजह से इस भौतिक संसार में साधारणतः जीव जो हैं एक लाइन वापस ऊपर जाती है कूटम में। मतलब वो जब किसी पाप कृत्य में लगता है, मान लीजिए कि उसने जो भी कुछ किया, पाप किया, चोरी की या मांसाहार कुछ भी, नशा इत्यादि जो कुछ, तो जब वो उसमें लगता है तो जो प्रोक्लिविटी है, प्रवृत्ति है उस पाप करने की, वो और स्ट्रांग होती है, तो वो वापस उस चक्र में फंसता जाता है। तो कई बार लोगों को लगता है ना कि अरे भोग लो फिर बाद में वो प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तो ये भोग लो प्रवृत्ति नहीं रहेगी, ये उसी के समान है जैसे कि कोई शेर मांसाहार कर कर के इस अपेक्षा में कि एक दिन मैं शाकाहारी बन जाऊंगा। अ पर्सन हु एंगेजेस इन सिंफुल एक्शन थिंकिंग दैट वन डे आई विल गेट ओवर दिस प्रोक्लिविटी इज एज गुड एज अ टाइगर eating meat every day with the expectation that one day I'll become vegetarian. क्या है? नहीं, वो जितना उसको खा रहा है, बोलते ना खून का टेस्ट उसको जब आ जाता है तो उसको वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इसलिए यहां पर जब तक कि श्री भगवान उवाचा हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक ये जो इतना डिफिकल्ट फ्लो चार्ट है सिन का, कोई आशा नहीं। ये कर्मकांड घुमाते रहो फोड़े के बगल में, फूंक मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला है उससे, उंगली दुखेगी और ज्यादा, एक और तकलीफ शुरू होगी, वापस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर बोला अभी क्या हो गया, अभी उंगली दुख रही है, तो डॉक्टर बोला दूसरी उंगली से शुरू करो। कर्मकांड यही है, ये एक उंगली दुखना शुरू कर दी, दूसरी उंगली लगाओ, सब उंगली लगा दो, हाँ, और कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर वो बोलते हैं कि काट दो उसको, ये है मायावाद, फोड़े को काट दो, दिखाई नहीं दे रहा है ना, मतलब नहीं है, फिर वापस, क्योंकि खून गंदा है तो फिर वापस वो फोड़ा शुरू हो जाता है। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि अर्जुन, सोचिए कि भगवान ने अर्जुन को निष्पाप कहा, तो जब तक हम ये चार्ट नहीं समझेंगे तब तक हमारा अर्जुन के प्रति एप्रिसिएशन ने जागृत होगा। खाली एक वर्ड भगवान ने बोला है लेकिन वो एक वर्ड के पीछे अर्जुन ये सब अपना जो बकाया है क्लियर किए सारे कर्मों का। तो इसलिए बहुत भगवत गीता के जो रेसिपिएंट है अर्जुन, उनका स्टैंडर्ड देखो, ये समझ में आता है इस चार्ट के बाद। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति के जो अलग अलग लक्षण हैं, छह लक्षण बताए उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें से ये एक लक्षण है जिसे कहते हैं क्लेशाग्नि, कि कृष्ण भक्ति करने से जो क्लेश हैं हमारे पापों के कारण, हमारे जीवन में जो क्लेश हैं जितने भी सारे आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक और जन्म मृत्यु जरा व्याधि जितने भी ये सारे क्लेश हैं, इन सब क्लेशों का शमन केवल कृष्ण भक्ति से हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को एक प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि पंचम स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया है, कैसे नरक यातनाएं होती हैं, कौन कौन से पाप होते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज अब बहुत चिंतित हुए, हालांकि सात दिन में तक्षक उनको डसने वाला है, लेकिन उनकी चिंता वो जो नरक में यातना भुगत रहे उनके विषय में, यह है शुद्ध भक्त। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आपने तो ये पापियों के विषय में बता दिया कि कौन सा पाप पापी को कौन से नरक में ले जाता है, लेकिन छुटकारा उसके बारे में बताया नहीं आपने। तो इसलिए छठा स्कंद जो है वो प्रारंभ होता है सुखदेव गोस्वामी के इस वर्णन से कि वास्तविक रूप में इन सभी पापों से मुक्ति कैसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी भी वो टेस्ट करते हैं परीक्षित महाराज को, पहले कर्मकांड की विधि बताते हैं कि कर्मकांड की विधि से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि ये जो आप बताएं कि कर्मकांड की विधि से पाप एडजस्ट हो जाएगा, ये तो हाथी स्नान के समान है। हाथी स्नान करता है, बाहर आकर फिर रेती में लौटना शुरू कर देता है। तो कोई व्यक्ति ये हवन, ये होम, ये पूजा, ये देवता, ये तीर्थयाटन करके आ गया, लेकिन फिर उसके अंदर जो वो प्रवृत्ति है, कूटम बीजम जो है, वो फिर से पनपना शुरू हो जाता है। तो उसका उपाय क्या है? तब फिर अजामिल की कथा सुनाते हैं छठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी, कि अजामिल जो इतना बड़ा पापी था, केवल भगवान के नाम लेने मात्र से उसके जितने सारे ये कूटम बीजम फलोन्मुखम अप्रारब्ध प्रारब्ध सब कुछ क्लियर हो गया। अजामिल का सब रिकॉर्ड क्लियर हो गया। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक आज के श्लोक का पॉइंट कि श्री भगवान उवाच और अनघ निष्पाप अर्जुन का क्या कनेक्शन था। और दूसरा पॉइंट कि आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना, कि दो प्रकार के निष्ठाएं हैं जो कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार तक पहुंचा सकती है, एक है सांख्य योग या फिर ज्ञान योग, और दूसरे भक्ति या बुद्धि योग या कर्म योग। तो भगवद गीता में भगवान ने हर प्रकार का जो प्रामाणिक मार्ग है वो बताया है। ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान, क्योंकि भक्ति से बहुत आकर्षित होते हैं, इसलिए भगवान ने केवल भक्ति बताई अर्जुन को शुरुआत से, नहीं, भगवान ने सब कुछ बताया। तो ये जो दूसरा सिद्धांत आज के श्लोक में हम सीख सकते हैं वो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन अवर वैदिक स्क्रिप्चर्स, स्पेशली भगवद गीता। तो कोई व्यक्ति यदि आकर्षित है ज्ञान मार्ग से, यदि कोई आकर्षित है अष्टांग से, तो उसके लिए भी एक सेक्शन है भगवद गीता में जिसके द्वारा वो भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझना। हालांकि बहुत फेमस एक फ्रेज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या है, अनेकता में एकता, ये बहुत फेमस फ्रेज है। स्पेशली हम यहाँ पे ये इमेज इसलिए दिखाया गया है कि एक जैसे पेंटिंग आप देखो तो उसके अंदर कितने सारे कलर्स यूज किए जाते हैं, तो वो क्या है, डाइवर्सिटी है। सो मेनी डाइवर्स कलर्स आर यूज्ड टू मेक अ पेंटिंग, बट द इफेक्ट इज यूनिफाइड। व्हाट इज द यूनिफाइड इफेक्ट, दैट इट कम्स आउट ब्यूटीफुल, है कि नहीं। तो इंडिया में आप देखोगे कि ये सब कुछ बहुत यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है, ये एक कहीं हिमालय उत्तरांचल में एक ऐसे साइन बोर्ड बहुत फेमस हुआ जिसके अंदर ये एनालिसिस करके दिखाया गया कि हाउ यूनिटी इज देयर इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, सपोज टू बी देयर, वो अलग बात है कि क्या होता है, या फिर इस प्रकार का यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, और भगवद गीता में फिर भगवान इसको कैसे बता रहे हैं। तो आपको यदि याद है 2.46 जो श्लोक हमने लिया था, जिसके अंदर भगवान कहते हैं यावन अर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानतः एक है जानना और एक है विजानना। विजानना का अर्थ है बहुत विशेष रूप से जो जानता है। कैसे, इधर एग्जाम्पल दिया है भगवान, एग्जाम्पल देते हैं कुएं का और एक जलाशय का, कि एक कुआं है और एक जलाशय है। तो ये एग्जाम्पल भक्ति मार्ग और कर्मकांड इससे संबंधित है। तो जैसे कि कर्मकांड में इतनी सारी विधियां बताई गई हैं, तो उसकी तुलना अलग अलग कुएं से की गई। जैसे किसी गांव में बहुत अलग अलग प्रकार, पहले के जमाने में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कुएं हुआ करते थे, तो कर्मकांड की विधि उस प्रकार से है। लेकिन एक जो बड़ा जलाशय के संपर्क में कोई आता है तो सब कुछ वो अपने कार्य वहीं पे सार्थक कर सकता है, तो वो है कृष्ण भक्ति। तो जैसे कि कई कई कुएं होते हैं वहां पर केवल कपड़े धोए जाते हैं, कई कुएं होते हैं केवल पीने का पानी, लेकिन एक जो जलाशय होता है वहां पर व्यक्ति सब अपने ये अलग अलग कार्य सिद्ध कर सकता है, वो है कृष्ण भक्ति। तो ये एग्जाम्पल भगवान ने दिया। अब इसमें यदि हम देखें तो कितने कुओं के पास जाना पड़ेगा यदि कोई अपने पाप कृत्य से मुक्त होना चाहता है या फिर अपने जीवन को शुभ बनाना चाहता है उस स्तर पर, कर्मकांड के स्तर पर। तो हम देखेंगे कि उसको कितने कुएं विजिट करने पड़ेंगे, कर्मकांड के विभिन्न कुएं। तो ये सब कुछ फिर से शास्त्र में बताया गया। जैसे कि यदि स्थायी नौकरी चाहिए, हालांकि इसे अभी हम कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि स्थिरता, आर्थिक स्थिरता बहुत रह रहे आजकल स्थायी नौकरी। तो पृथ्वी और क्षितिज होराइजन जो होता है, तो अगर कोई उसकी पूजा करेगा तो उसकी नौकरी, ये हम लिस्ट अभी जो दे रहे हैं ये नहीं कि आप उसको नोट डाउन कर कर ढूंढने लग जाओ गूगल में सारे कुएं कहां मिलेंगे। अगला कुआं, धन की लालसा। स्थायी नौकरी भी अगर किसी की हो लेकिन अगर धन पूर्ण प्रकार से नहीं मिल रहा, तो धन की लालसा के व्यक्ति को कुबेर एवं वसुओं के कुओं पर जाना पड़ेगा। फिर प्रबल काम वासना को संतुष्ट करने के लिए इंद्रदेव, उनकी आराधना, उनकी पूजा, सुंदर पत्नी, ये हैं अप्सरा उर्वशी। तो यदि किसी को सुंदर पत्नी की अभिलाषा है तो उर्वशी से वो प्रार्थना कर सकते हैं, उस कुएं पर जा सकते हैं, उस स्वयं की सुंदरता के लिए, कोई उर्वशी के पास नहीं जा सकता, तो स्वयं की सुंदरता के लिए वो कौन सा ब्यूटी पार्लर पे जाए, गंधर्वों के ब्यूटी पार्लर पर जाए। वो लोग बहुत सुंदर हैं और सुंदर सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। फिर आगे बताया गया है कि वैवाहिक संबंध, ये बहुत जरूरी है आजकल कलयुग में, कि उसके विषय में बताया गया है कि उमा देवी हैं और लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जो कि एक आइडियल एग्जाम्पल है कि कैसे वो नारायण जी की सेवा में लगी रहती है, और उनका एक बहुत ही आइडियल कपल का एग्जाम्पल बताया गया है। एक दफा आप जानते हैं लक्ष्मी देवी का वाहन कौन सा है? कौन जानता है लक्ष्मी देवी का वाहन क्या है? नहीं, उल्लू 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 औल लक्ष्मी देवी का वाहन है। नहीं पता था आप लोग? अरे लक्ष्मी पूजा रोज हर साल आप मनाते हैं, मालूम नहीं उनका वाहन कौन सा है? तो ये एक्चुअली उसी के संदर्भ में है कि जो लक्ष्मी देवी का वाहन उल्लू, उल्लू से तो वाकिफ है ना, तो उल्लू वो लक्ष्मी देवी के पास कंप्लेंट करने के लिए गया कि हर साल आपकी इतनी पूजा होती है जोर शोर से, मुझे तो कोई पूछता नहीं, यहाँ पे देखिए पता ही नहीं आप लोगों को। लक्ष्मी देवी से उल्लू ने कहा कि आपकी पूजा होती है लेकिन मैं आपका वाहन हूं, इतनी आपकी सेवा, मेरी कोई पूजा ही नहीं करता। तो लक्ष्मी देवी कहा ठीक है, अगले साल से मेरी पूजा के तुरंत पश्चात तुम्हारी भी पूजा होगी। तो नारायण इन्होंने सुन लिया, वो कहे कि अरे दिमाग खराब हो गया, लोग उल्लुओं की पूजा करेंगे? अरे वो निवेदन करने के लिए आया तो मेरे को देना ही चाहिए था कोई एक कोई स्लॉट पूरे कैलेंडर में उसकी पूजा के लिए। तो फिर नारायण, इनके मन में भी जिज्ञासा हुई कि भाई क्या उसकी पूजा को बोलेंगे क्या? तो उन्होंने कहा देखिए मेरी लक्ष्मी पूजा होती है, उसके बाद नेक्स्ट पूजा होती है करवा चौथ। तो वो वरदान उन्होंने अपने वाहन को दिया। हरे कृष्ण। तो यहां यदि वैवाहिक जीवन के संबंध को किसी को सुखरूप करना है तो ये कुआं बताया गया। फिर अच्छी संतान के लिए प्रजापतियों की आराधना बताई गई है कर्मकांड में। प्रचुर मात्रा में इंद्रिय भोग यदि किसी को प्राप्त करना है तो चंद्रदेव, विद्या के लिए सरस्वती एवं शिवजी, लंबी आयु के लिए अश्विनी कुमार जिनके पास बहुत से अलग अलग प्रकार के औषधियां और द्रव्य हैं तो उनकी आराधना। फिर अच्छे सौभाग्य के लिए दुर्गा देवी की आराधना बताई गई है। अत्यंत शक्तिशाली किसी को होना है तो अग्निदेव। अन्यों पर शासन यदि किसी को जमाना है तो ब्रह्मा जी। और अंत में बहुत विशेष, अच्छे बैंक बचत के लिए वरुण देव, इनकी आराधना बताई। तो अब ये इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बताया गया, इसलिए आप यदि देखो तो हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं 96% कर्मकांड उसमें बताया, एंड ओनली 4% इज प्योर डिवोशनल सर्विस। क्यों? क्योंकि 96% लोग ये अलग अलग इच्छाओं से अपना जीवन का उद्देश्य वो स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए कम से कम वो वैदिक स्कूल में कनेक्ट हों, इसलिए ये सारे अलग अलग प्रकार के कुएं और उपाय और कर्मकांडिक विधि ये सब बताई गई। और फाइनली यदि किसी को शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है तो वो केवल भगवान श्री कृष्ण से ही प्राप्त कर सकता है। इफ वन वॉन्ट्स प्योर डिवोशनल सर्विस वन कैन गेट ओनली बाय वर्शिपिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड कृष्णा। तो भक्ति योग, इसकी तुलना श्रील प्रभुपाद ने किया जैसे कि किसी करेंसी नोट का हाईएस्ट डिनोमिनेशन, यहां पर इंडिया में क्या है 1000 है, उससे ऊपर तो नहीं आया ना अभी तक, तो 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज में प्रभुपाद ने सिंपल एग्जांपल दिया कि 500 रुपए भी हैं, 100 भी हैं, 200 भी हैं, 50 भी है, 10 भी है, 5 भी है, 2, 1, सब कुछ है उसके अंदर। तो वैसे ही वो जलाशय और आज के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से कोई व्यक्ति मुझको कनेक्ट कर पाएगा जरूर, लेकिन कोई जब भक्ति से मुझे कनेक्ट करेगा, आगे चलकर भगवान बताने वाले हैं अर्जुन को, तो वो हर रूप से कनेक्ट कर रहा है। तो इसलिए इस श्लोक से कनेक्टेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता के 9th चैप्टर का, जिसका शीर्षक है, कौन जानता है 9th चैप्टर का शीर्षक क्या है? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। ये 9th चैप्टर इसलिए एकदम बीचों बीच भगवान ने उसको रखा है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक उस 9th चैप्टर का। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। यदि हम लोग जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए, हम लोगों को यदि कोई आकर चैलेंज करे कि भाई ये भगवत गीता के आधार पर कृष्ण भक्ति ही क्यों करनी चाहिए, तो ये एक श्लोक आप याद रखिए। इसका ट्रांसलेशन अभी हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा आप कन्विंस कर सकते हैं अपने आप को और किसी और को भी, व्हाई कृष्ण कॉन्शियसनेस बेस्ड ऑन भगवद गीता इज द सुप्रीम मोस्ट प्रोसेस। जानना चाहेंगे? फिर भी बताने वाला हूं मैं, नहीं भी बोलेंगे तो। तो हम चर्चा कर रहे थे अनेकताओं का, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस श्लोक में 8 अलग अलग प्रकार की अनेकताएं भगवान बता रहे हैं, कैसे कृष्ण भक्ति में आपको यह सब कुछ मिलेगा, कहीं किसी कुएं में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज कृष्णा इज योर रियल वेल विशर, यू डोंट हैव टू गो टू एनी वेल। तो यदि हम एक एक कर लें, तो कोई व्यक्ति, हम इसको इस प्रकार से समझेंगे कि मान लो कि एक व्यक्ति संशयात्मा, मिस्टर संशयात्मा आए हैं और उनको संशय है क्या कि ये भगवद गीता पर आधारित कृष्ण भक्ति क्यों मैं पालन करूं। तो अगर वो पूछता है सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा, या आप लोग खाली ये हाथ ऊपर कर हरिनाम संकीर्तन में लगे रहते हो? कई बार लोगों को लगता है कि हरे कृष्णा मतलब ये लोग भावुक लोग हैं, दे आर ऑल सेंटिमेंटल पीपल, दे डोंट हैव द बेसिस ऑफ फिलॉसफी, ये लोग बस अलग अलग ट्यून में खाली गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, बस यही इनका। लेकिन भगवान अगर कोई ऐसा चैलेंज करता है, ऐसी चुनौती देता है, तो भगवान बता रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट नॉलेज, दिस भगवद गीता इज राज विद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। अगर रियली कोई कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी से अट्रैक्ट होना चाहता है तो वो भी है, भगवान बता रहे हैं। So for that also, please step into this house of Krishna consciousness, Krishna is saying. तो फिर कोई पूछ सकता है कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये विद्याओं में राजा है, तो क्या ये बहुत, फिर बहुत पब्लिक होगा ना ये तो, मतलब फिर तो कोई भी पालन कर सकता है, क्योंकि जैसे राजा को सभी जानते हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री हैं या किसी भी देश का कोई बहुत बड़ा नेता, राष्ट्रपति हो, सभी लोग जानते हैं उसको। तो भगवान कहते हैं कि हालांकि ये राजाओं, विद्याओं का राजा है, लेकिन सही मायने में यदि कोई जानना चाहता है मुझे, तो बहुत गुह्य, इट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट। जैसे कि हम हमारे प्रधानमंत्री को जानते हैं लेकिन नहीं भी जानते, वी नो दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर बट वी डू नॉट नो व्हाट आर हिज इंटरनल एक्टिविटीज। कौन जानता है उनके इंटरनल एक्टिविटीज को? उनके जो पार्षद हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि हालांकि ये राजा के समान ये विद्या होगी, लेकिन कोई यदि सही रूप से इसका पालन करना चाहता है, जानना चाहता है, तो उसे मेरा भक्त बनना पड़ेगा। तो भगवान यहां पर विद्या के साथ भक्ति को नीचे नहीं दिखा रहे। ये राज्य गुह्यम का अर्थ क्या है? ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस यू कैन नो द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो कोई ये समझे कि अरे भाई भगवान ने तो ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, नहीं, नेक्स्ट जो वर्ड यूज किया भगवान ने, राज्य गुह्यम, उसका अर्थ क्या है? ओनली बाय भक्ति दिस सीक्रेट विल बी रिवील्ड। तब फिर कोई पूछे कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि विद्या किंग ऑफ ऑल नॉलेज है, और ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ये इसके साथ साथ भक्ति का मार्ग भी आप बता रहे हैं, लेकिन क्या मेरे पापों से मुझे मुक्ति मिलेगी क्या? हाँ, उसका क्या, जो इतने मैंने पता नहीं अनजाने में जाने में कितने पाप किए हैं, कितने जन्मों से, व्हाट अबाउट दैट? तो इसलिए फिर भगवान आगे कहते हैं, पवित्रम राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम। इट इज नॉट जस्ट द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, क्योंकि बहुत सी विद्याएं हैं, जरूरी नहीं कि वो विद्या आपको शुद्ध करेंगी, लेकिन भगवान यहां पर बता रहे हैं कि ये ऐसी विद्या है, ये ऐसा प्रोसेस है कि जो आपको सभी पापों से मुक्त कराकर पवित्र कर देगा। इट्स द मोस्ट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रोसेस टू फिल्टर ऑल द कंटेमिनेशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। पवित्रम, तो अगर कोई पवित्रता चाहता है कि मुझे इस मार्ग में कुछ पवित्रता मिलेगी, तो भगवान कहते हैं हाँ, वो भी मिलेगी। फिर आगे कोई पूछता है कि ठीक है, आप लोग जो प्रोसेस करते हो, वो उसके एक्टिविटीज बहुत पवित्र हैं, क्या मैं उस पवित्र एक्टिविटीज के द्वारा जो तमोगुण है, उत्तम, उत्तम का अर्थ है तमोगुण के ऊपर, उत्तम, तो जो तमोगुण या रजोगुण और सत्वगुण है उसके ऊपर क्या मैं जा पाऊंगा कि नहीं? जैसे कि कोई एक्टिविटी पवित्र के कैटेगरी में आएगी, पर जरूरी नहीं कि वो तीन गुणों के परे होगी। जैसे हाल ही में हम ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि लोग सुबह उठकर योगा करते हैं, हाँ, कितने, बहुत से लोग सुबह उठकर योगा करते हैं, कई 5 बजे उठ जाते हैं योगा करने के लिए। अब 5 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, और योगा करना ब्रह्म मुहूर्त के समय में एक बहुत पवित्र एक्टिविटी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो 3 मोड्स के ऊपर हैं ये लोग, क्योंकि 90% जो योगा करते हैं वो किस कॉन्शियसनेस में करते हैं? कि मुझे एक शेपली बॉडी मिलनी चाहिए, तोंद कम होनी चाहिए, थोड़ा दिखने में एकदम अच्छा फिजिक होना चाहिए। तो वो है क्या? तमोगुण के अधीन है, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ है। तो 5 बजे उठ के एक्टिविटी उनकी पवित्र है, लेकिन कॉन्शियसनेस 3 गुणों के अंदर है। सो हियरिन व्हेन कृष्णा इज सेइंग that the action and the effect both are beyond the three modes. ये समझना चाहिए. तो पवित्रम के बाद सीधा इदम उत्तमम जो भगवान ने श्लोक में कहा उसका अर्थ क्या है? बियॉन्ड द थ्री मोड्स, विच मीन्स शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है वो. फिर आगे कोई बोले, ये जो आप लोग इतना बताते हो कि किंग ऑफ ऑल नॉलेज है, आप शुद्ध हो जाओगे और तीन गुणों के परे चले जाओगे, लेकिन इसका कोई मुझे डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा क्या? कि खाली बोल बच्चन है आप लोग, कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस? तो भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम, डायरेक्ट एक्सपीरियंस. आओ, माला हाथ में लो, भगवान के अर्च विग्रह को देखो, नृत्य करो, महाप्रसाद खाओ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है कि नहीं? हम लोग ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हम जब ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना प्रारंभ किए, हमको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिला किसी का. हाँ, हमारे अनंत भार आए, वो भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ना. ये नहीं कि हमको तुरंत कृष्ण प्रेम मिल गया. इसलिए उस दिन हम चर्चा कर रहे थे कि और किसी का भी नाम, कोई भौतिक नाम, आप एक मिनट से ज्यादा उस माला पे नहीं ले सकते. The very fact that you are able to chant even one round, two round, four round or 16 rounds of Lord Krishna proves that you are experiencing something directly with Krishna. Nahi to kisi bhautik naam ko hum ek minute se zyada nahi le sakte. Koi bhi bhautik naam, aapko agar hum bole ki Coca-Cola, Cola-Cola, Coco-Coco, iska karo, ek mala karo. कितना अजीब लगता है. लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि भगवान का डायरेक्ट एक्सपीरियंस भगवान ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस. बहुत से ऐसे ऐसे उदाहरण हैं श्रील प्रभुपाद के शिष्य जो कि अपना डायरेक्ट एक्सपीरियंस बताते थे कि कैसे वो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया चैंटिंग करने से, चार नियम पालन करने से, हियरिंग और चैंटिंग प्रोसेस फॉलो करने से, डीटी वर्शिप करने से, महाप्रसाद खाने से इत्यादि. तो यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस भी है अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड है. बहुत सुंदर मार्केटिंग कर रहे हैं भगवान इस श्लोक के द्वारा, कि जैसे एक एक्सपर्ट सेल्समैन होता है, वो जानता है कि अगला व्यक्ति का अगला क्वेश्चन क्या होगा, वो पहले से उसके आंसर्स रेडी है. तो भगवान के आंसर्स पहले से रेडी है. कोई पूछा ये रहा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये बोलो. फिर वो अगर आगे पूछे कि भाई ये आप लोग जो करते हो, ये आपका बनाया हुआ है कि धार्मिक है कार्य? कई बार लोगों को लगता है कि इस्कॉन मतलब ये एकदम मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है ना, बहुत ही सब इंग्लिश में पावर पॉइंट, भगवद गीता पावर पॉइंट के साथ, लैपटॉप ये वो, और जो जो ये लोग ना हाईटेक तरीके से प्रीचिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इनके कीर्तन में गिटार भी आ जाते हैं कई बार. तो भाई मैं तो क्या, मुझे मैं कुछ पालन करूंगा तो क्या मैं धार्मिक कहलाऊंगा कि नहीं? इज दिस प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल्सो अ रिलीजन? भगवान कह रहे हैं डेफिनेटली. कौन सा है भगवत, श्रीमद भागवत का वो श्लोक है ना, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि केवल धर्म नहीं, सभी धर्मों में जो परो धर्मो है वो है ये किंग ऑफ ऑल नॉलेज, ये राज्य गुह्यम, ये भक्ति का मार्ग. तो ये भगवान, अगर कोई ये पूछे कि क्या मैं धर्म के मार्ग में लगूंगा कि नहीं, तो हाँ क्यों नहीं, धर्म्यम. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं. तो कुछ, अरे कुछ सुख मिलेगा क्या? हाँ, कुछ सुख मिलेगा? भगवान कहते हैं सुख नहीं, सुसुखम. ऐसा सुख मिलेगा कि वो व्यक्ति अपने जीवन में आज तक किसी भी इंद्रिय भोग या जितने सारे इंद्रिय भोग है उनको मिलाकर एक जगह रख दे, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस विच वन गेट्स वंस गेटिंग कनेक्टेड टू कृष्णा is so transcendental and supreme that not even ब्रह्म सुख, यहां तक बताया गया कि ब्रह्मा जी को जो सुख मिलता है ब्रह्मलोक में वो भी किसी तुलना में नहीं है कृष्ण भक्ति के इस सुख में. तो सुसुखम. तो और फिर लास्ट क्वेश्चन हमारे मिस्टर संशय आत्मा पूछ रहे हैं कि भाई जैसे कि इस भौतिक संसार में भी मुझे सुख मिलता है लेकिन खत्म हो जाता है वो सुख, है ना. सुख की शुरुआत होती है और फिर उसका अंत होता है, अद्यंतवंत, वही गीता में भगवान बोले. तो क्या इसका भी अंत होगा क्या एक दिन? जैसे कि गर्मी के मौसम में मैं जब कोल्ड ड्रिंक पीता हूं तो उसकी शुरुआत होती है उस सुख की और फिर उसका अंत भी, जानता हूं मैं कि ये खत्म होने वाला है. इसलिए गर्मी के मौसम में जब कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है इंडिया में खास करके बार बार देखता रहता है कितना बचा है कितना बचा है, क्योंकि उसको एंजॉय करने से ज्यादा उसको चिंता ये रहती है कि कम होते जा रहा है कम होते जा रहा है, फिर लास्ट का घूंट जो बचा रहता है उसको बचा के रखता है. तो क्या ये जो आप सुसुखम बोल रहे हो क्या इसका भी एंड होगा? मतलब हो सकता है इसका भी एंड हो. तो फिर लास्ट में भगवान जो आठवां मुद्दा बता रहे हैं, अव्ययम. अव्ययम मतलब उसका कोई व्यय नहीं है, इट इज एवर लास्टिंग. चैतन्य महाप्रभु ने भी जो पहला श्लोक अपनी शिक्षाओं में कहा, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, कि एट एवरी स्टेप ये जो इसका आस्वाद है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और कभी घटता नहीं. तो यदि ये जो आठ मुद्दे अगर हम ठीक से समझ लें तो भगवान ने इसे एक श्लोक में बता दिया है कि भक्ति मार्ग का जो प्रोसेस है या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस हम भगवत गीता के आधार पर पालन कर रहे हैं तो कैसे ये परफेक्ट है, फुल प्रूफ फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू. राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. देयरफॉर इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल नॉलेज एंड द प्रोसेस इज द सुप्रीम मोस्ट प्रोसेस. इसलिए ग्रंथों का राजा ये भगवद गीता को बताया गया. इसलिए आज के श्लोक में भी भगवान हालांकि सांख्य योगा नाम इसके विषय में बता रहे हैं और फिर बुद्धि योग अष्टांग योग भगवद गीता में अलग अलग प्रकार के पथ मार्ग बता रहे हैं, लेकिन उन सब का निचोड़ क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध प्रेमा भक्ति में लगे. और इसलिए भगवान छिपा नहीं रहे किसी भी मार्ग को भगवद गीता में, ये नहीं कि छिपाते हुए खाली भक्ति मार्ग बता दिया, नहीं, सब मार्ग बता रहे हैं. और सब मार्ग बताने के पश्चात फिर अर्जुन को प्रत्यक्ष बताते हैं कि मैं तुम्हारे सामने भगवान खड़ा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि इसमें सर्वोच्च कौन सा है. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ भगवद गीता. इवन वी टेक वन वर्स फ्रॉम द थर्ड चैप्टर और वी टेक 18.66 फ्रॉम द 18th चैप्टर, द कंसिस्टेंसी इज दैट कृष्णा इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे भगवान. अर्जुन को शुरुआत से लेके अंत तक भगवद गीता एज इट इज दिया है और वही शिल प्रभुपाद ने भी हमको यथारूप भगवद गीता प्रस्तुत की. इफ यू जस्ट फॉलो इट एज इट इज देन लाइक अर्जुन वी कैन बी ऑल्सो कॉल्ड अनघ, निष्पाप एंड देन डिवोटी ऑफ कृष्णा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. तो 3.4 अब भगवान बता रहे हैं कि संन्यास लेने मात्र से ही सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अर्जुन का भी झुकाव थोड़ा उधर ही जा रहा है कि कहीं तो भगवान बोल दें कि अर्जुन तुम संन्यास ले लो इस युद्ध से. भगवान अगले श्लोक में बताएंगे कि नहीं. तो ये है 3.4 अगले बुधवार को. हरे कृष्णा.